रविंदे न पैदा रविंदो मुखा रविंदे बिन रे शयंतो तस्य पात्र शकुते शयानं पालं मुकुन्दं मनसा
नामा
Krishna Syamano Harani Namaste Bhakta Trivina Shrani Govinda Dharma Sukha vasane kiteve vasaram Sukha vasane kiteve Vasane idame vachapyam Govinda namo Paramadveti Govinda namo Shri Krishna Radha Vare Gopulesha Gopale Gova Dhananath Vishnu Jihave Vivaswa Vritta Medha Deva Govinda Dhamo Paramadve Jihave Rasage Madhura Priyatam Satyam hitam tvam paramam vadami avalayena madhura charani Dandadhare Krishante Vaktavya Deva Madhuram Krishnatya Govinda धन्नो शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु गुरुः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा त्वमेव प्रत्यक्षं अवतु रक्षारम् ॐ शान्तिः 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 वसुदेवसुतं देवं संसृतानु देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चरा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दबन्धम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् काशी विश्वनाथ भगवान् जय कृष्ण कन्हैया जय भागवत भगवान् जय सुखदेव जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान् की जय देव गुरी जी महाराज की जय सब संतन की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
परम कृपालु, परम दयालु, परात्पर, परब्रह्म, जिनकी कृपा से, जिनके अनुकंपा से हम सब लोगों को उस परमात्मा के नामस्मरण, उनका चिंतन, उनके गुणगान श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर यहां पर बैठे हुए भोगदेव, बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसा लौकिक अवसर कभी कभी प्राप्त होता है जब आपके हृदय के भाव बिल्कुल विशुद्ध हो, जब आपके कभी कभी पुण्य जग जाए, प्रकट हो जाए, तो ये प्रसंग प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान ब्रह्मदेव, भूदेव और आपके हृदय में बैठा हुआ वो परमात्मा, सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा से कोई एक भी कोई कण उससे छुटा हुआ नहीं है, कण कण में व्याप्त वो परमात्मा। आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है उसका प्रत्यक्षकरण यहां पर हो रहा है। आप श्रोतागण, हमारे संगीतकार जो बहुत दूर से यहां पर आए हैं और आपको बहुत मधुर वाणी से संकीर्तन भी कराएंगे, कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं, एक होता है नित्य, एक होता है नैमित्तिक। अपने यहां पर नित्य प्रसंग चलता है, सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, संकीर्तन होते हैं, भजन होते हैं नियमित रूप से। ये नैमित्तिक कार्य है, वार्षिक कार्य है। और वार्षिक कार्य क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे सद्गुरुदेव, इसके पीछे एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस परमात्मा का अनुभव किया, उस परमात्मा का अनुभव करते हुए उन्होंने विचार किया कि केवल मैं ही अनुभव करूंगा तो ठीक नहीं, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, सभी इसका लाभ प्राप्त करें। जो ब्रह्मविद होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रुति कहती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और वैसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबका कल्याण चाहता है। ऐसे प्रसंग पर उनको जाकर के भी 59 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, हो गए, और फिर भी आज भी उस धारा को उनके माध्यम से ये प्रेमपुरी आश्रम सभी तक पहुंचा रहा है। ऐसा ये नैमित्तिक कार्य आज यहां पर हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि हम लोग यहां पर बैठे हैं श्रोता और वक्ता के रूप से नहीं, हम लोग उस पूर्ण परब्रह्म का चिंतन करने बैठे हैं। आप संसार में कोई कार्य करते हो उसका क्षणिक महत्व तो है, उसका स्थायी महत्व नहीं है। जो कल गया वो पुनः वापिस आने वाला नहीं है। आपने जो कल कमाया वो चला भी गया, चाहे वो खर्च में चला गया हो, आपके अकाउंट में चला गया हो, आपके बिल भरने में चला गया हो, वो चला गया। कल जो आपने क्षण बिताया वो अब दोबारा आने वाला नहीं है। परंतु ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं और आप और हम, ये हमारे साथ रहने वाला है, हमारे साथ चलने वाला है। इसलिए एक महान कार्य किसी किसी से होता है। और इस बार हमारे सभी यहां के जो भी ट्रस्टी हैं, विशेष रूप से यहां पर इस बार जो यजमान विशेष रूप से आए हुए हैं उनको भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा सत्कर्म किया है जो इस वातावरण में बैठ करके इस स्थान पर बैठ करके उस परमात्मा का स्मरण करने जा रहे हैं। वो परमात्मा क्या है? कोई बात आपको अगर श्रवण करनी हो पहले उसको देखना पड़ता है कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, हमें क्या करना है। ये श्रीमद् भागवत जब आप लोग कथा श्रवण करेंगे उसका महात्म्य श्रवण करना चाहिए। पहले श्रीमद् भागवत तो विशाल ऐसा ग्रंथ है कि उसमें से थोड़ा बहुत हम लोग कुछ बोल पाते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत आप ग्रहण कर पाते हैं और बहुत थोड़ा उसको हम अपने जीवन में उतार पाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत में क्या कौन सा प्रसंग आया है उस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करते हैं। तो भागवतकार ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहते हुए जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाने वाला है, ऐसा जो परमात्मा है जिसको हम लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उस परमात्मा को हम लोग नमस्कार करते हैं सब मिलकर के। कौन परमात्मा, इसका स्वरूप क्या है? सद चित और आनंद जिसका स्वरूप है। मैंने प्रातः काल के प्रसंग में कहा था सत्य प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। आप अपने को सत्य मानते हैं कि नहीं मानते हैं इसका कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अगर आपको कहे कि आप सत्य बताओ, लोग पूछते हैं कि सत्य बोल रहे हो, तो सामने वाला बोलता है कि मैं सुगंध खाता हूं सत्य बोलता हूं। सुगंध भी दिखती नहीं है और सत्य भी नहीं दिखता है, लेकिन उसको बताना पड़ता है किसकी सुगंध खाता है, बोलते तुम्हारी सुगंध खाता हूं। तो इसका मतलब है कि वो सत्य नहीं है। सत्य समझने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। आप सत्य बोलते हैं कि असत्य बोलते हैं वो आपकी आत्मा जानती है। आप चाहे उसको कहो न कहो परंतु आपकी आत्मा जानती है कि मैं सत्य कर रहा हूं कि असत्य कर रहा हूं। ऐसा सत्य वास्तविक से जो सत्य है, जो परम सत्य है। दुनिया में दो तरह के सत्य होते हैं, एक होता है क्षणिक सत्य जिसका आधार बहुत नहीं होता है, और एक होता है परम सत्य। वो परम सत्य है परमात्मा, और परमात्मा जो परम सत्य है उसको ही हम लोग भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान स्वरूप को हम लोग जो स्वरूप देखते हैं वो तो है ही, वो तो आए बाल्यलय की बड़े होके चले भी गए, पर उनका आध्यात्मिक जो स्वरूप है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो है क्या? तो यहां पर भागवतकार कहते हैं सदचितानंद रूपाय, सद चित और आनंद स्वरूप वो परमात्मा। तो वो परमात्मा ही केवल सद और चित और आनंद स्वरूप है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ममय अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान ने क्या कहा? ये तो जो देख रहे हैं आप लोग सब कुछ तो मेरा ही अंश है। तो मेरा उनका अंश पेड़ हुए, पौधे हुए, पर्वत हुए, नदियां हुई, सागर हुए, सब तो उनका अंश हुआ कि नहीं हुआ? उसमें हम आए कि नहीं आए? हम लोग आए कि नहीं आए? हम किसके अंश हैं? हम परमात्मा के तो अंश हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण हमारे भीतर वो परमात्मा तत्व विद्यमान है ना, और वो त्रिकाल सत्य है। हम अपने जन्म से पहले थे कि नहीं, जब कहीं से आए हैं कि नहीं, हमारा सनातन धर्म इस बात का पूरक है, इस बात का प्रमाण है कि हम कहीं ना कहीं थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहु नाम जन्म नाम अंते, कहा बहुत जन्मों का जो परिपाक होता है सब कहीं वो मेरा भक्त बनता है, हम कहीं थे। वर्तमान है कि नहीं है, और हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। तो हम लोग सत्य है कि नहीं, हम त्रिकाल सत्य है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश होने के कारण हम भी अविनाशी हैं, परंतु थोड़े समय के लिए शरीर प्राप्त हुआ, और शरीर जन्मता है, बढ़ता है, और फिर पूरा हो जाता है। उसके भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है वो कभी भी ना घटता है, ना बढ़ता है, ना जन्मता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए हम उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, हमारे भीतर वो सत्य है, हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। इसलिए हम अपने आप को खोजने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को पहले नमस्कार करते हैं, और उसके बाद में हम अपने आप को उनके रूप में देखते हैं। बहुत अभी आप लोग श्रवण करेंगे आगे, ऐसा एक महान ग्रंथ है जिसके बारे में इस महात्म्य में कहा, और ये जो परमात्मा है चिद स्वरूप है, जो परमात्मा है क्या है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हम और आप उस ज्ञान को चाहते कि नहीं चाहते हैं? इस दुनिया में मुझे बताएं कि कौन अज्ञानी रहना चाहता है, है कोई ऐसा व्यक्ति कि कोई अपने आप को कह सके कि मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं? लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो अंदर से जानता है कि मैं सब जानता हूं, ये तो इसको मैं बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा हूं। सब जानते हैं, कोई मूढ़ नहीं रहना चाहता है, सब ज्ञानी बनना चाहते हैं। और आजकल जब तक, जब से ये क्या बोलते हैं उसको व्हाट्सएप, जब से आया ना, तो ज्ञान दूसरे से आता है और हम दूसरे को देते हैं, बड़ी समस्या। सामने वाला समझता है कि शायद उसने पढ़ करके भेजा होगा, वो समझता है कि जो उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं क्यों पढ़ू, इसको और आगे क्यों ढकेल दो। हम ज्ञान का दिखावा करना चाहते हैं, परंतु जानना तो सब चाहते हैं। हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं, हम लोग टीवी इसलिए देखते हैं, स्कूल कॉलेज इसलिए जाते हैं, और संतों से भी बैठ करके कृष्ण जप करते हैं उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, लौकिक परलौकिक क्या प्रकार का ज्ञान होता है। जो लौकिक ज्ञान तो हम सब करना चाहते हैं, परंतु अलौकिक ज्ञान कोई कोई उसकी पिपासा करता है, कोई कोई उसको जानना चाहता है, परंतु सब जानना चाहते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है जो ज्ञान स्वरूप है। आपके भीतर वो बैठा हुआ परमात्मा है जो जगत में व्याप्त है, वो परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, इसलिए आप जानना चाहते हैं। और तीसरा है आनंद स्वरूप परमात्मा है। भगवान का एक तीसरा जो स्वरूप है वो क्या है, आनंद स्वरूप है। भगवान को कहीं आपने इतने चित्र देखे होंगे, कहीं रोता हुआ, बिखरता हुआ, कभी कभी ऐसा परेशान होता हुआ कोई भगवान का फोटो देखा आपने? भगवान है ही नहीं ऐसा। भगवान सदा एक रूप रहने वाला, एक रस रहने वाला, एक स्वरूप रहने वाला, उसका आनंद स्वरूप। अगर भगवान इस जगत में व्याप्त है, एक छोटी सी चीटी होती है, चीटी होती है, जब आप कहीं पर शक्कर डालो वो वहां पर आती कि नहीं आती हो, उसको कैसे ज्ञान कि इसमें मिठास है। उसके भीतर भी बैठा हुआ परमात्मा वो आनंद देने वाला है। सब जीवों में वो परमात्मा बैठा हुआ है और उसका स्वरूप है आनंद। हमारे भीतर भी वो स्वरूप बैठा हुआ है, आनंद स्वरूप, इसलिए हम आनंद चाहते हैं। आनंद दो प्रकार का है, एक है भौतिक आनंद, आपने कल कोई चीज देख ली और उसको भूल गए, और एक है आपको सदा रहने वाला आनंद। जब आपके भीतर आपके मन में राग होगा, द्वेष होगा, क्लेश होगा, वो आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको तत्कालिक आनंद होगा। जब हमारे में किसी की शत्रु बुद्धि होगी, जब वो दुखी होगा, तो हमें आनंद प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो आनंद वो परमानंद नहीं है। आनंद तो हम चाहते हैं, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है और वही आपको आनंद देने वाला है। वो परमात्मा का स्वरूप जो हम भगवान श्री कृष्ण में देखते हैं, वही स्वरूप आपके भीतर है। और जब दोनों एक जब हो जाएंगे, फिर नाम रूप समाप्त हो जाएगा, फिर भेद समाप्त हो जाएगा। जितनी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, जितने आध्यात्मिक साधन हैं, भगवान का पूजन है, अर्चन है, जप है, तप है, ये सब उन भेदों को मिटाने के लिए है। कुछ लोगों ने भेदों को बनाने के लिए किया होगा, परंतु वास्तविकता तो ये है कि जितने साधन बने हुए हैं आध्यात्मिक, उन सब भेद को मिटाने वाले हैं। इसलिए हम ये भेद को मिटाना चाहते हैं, और इसलिए परमात्मा का जो नाम यहां पर बताया, सच्चिदानंद स्वरूप, परंतु उनकी और भी विशेषताएं हैं, वो इस जगत का कारण है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, ये विश्व बनाया किसने? लोग आजकल के वैज्ञानिक लोग अपना अपना मंतव्य, अपने अपने रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हुआ। ब्रह्मांड के खोज में निकले थे कुछ लोग, उन्होंने बहुत बड़ा एक सुरंग बनाया, उसमें ब्रह्मांड की खोज करने। अरे सुरंग में कहां ब्रह्मांड मिलने वाला, आपके सामने ब्रह्मांड बैठा हुआ है। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी बनाई किसने? विश्वोत्पत्यादि हेतवे, वो जो परमात्मा है, संपूर्ण जगत की रचना करने वाला, उसकी उत्पत्ति करने वाला है। उसने उत्पत्ति भी की, और उस उत्पत्ति करने के बाद में उसने कुछ इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी। अरे जीवात्मा आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ तो करेगा। इस जगत को त्रिगुणात्मक बना दिया, सत्व, रज और तीन गुण डाल दिए, और तीनों गुणों के बाद में ये सृष्टि बनी। और उसके बाद में वो जो परमात्मा के जब हम शरण जाएंगे, तापत्रय विनाशाय, तीन ताप कहते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। यहां तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कई बार भागवत न सुनी हो, सब पता है, परंतु उसको नवीनता से हम लोग श्रवण करते हैं, हमको पता लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुना था। जो आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक के जो त्रिताप हैं, ये भगवान की तरफ जाने से रोकते हैं, ये परमात्मा की ओर जाने से ये हमें अवरुद्ध करते हैं। अधिदैविक बोलते हैं ना कि जो ये प्रकृति के द्वारा जो कभी कभी कोई ताप प्राप्त होता है, उसके हमारे पास कोई साधन, अभी किसी वैज्ञानिक ने उसका कोई अभी उपाय निकाला नहीं है। अगर धरती कंप आता है तो वैज्ञानिकों के पास में उसका कोई साधन नहीं है कि उसको रोका जा सके। अधिदैविक अनेक अनेक ताप आते हैं, अधिभौतिक आते हैं। पहले के समय तो बोलते थे कि सांप बिच्छू ये वो काटने से कोई मर जाते हैं, आजकल तो सांप बिच्छू सड़क पर घूमते हैं, बड़े विकराल हैं। रिसर्च है कि अपने देश में कितने ही लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ये भी एक प्रकार का ताप है, ये भौतिक ताप है। केवल सर्प और बिच्छू के काटने से किसी की मृत्यु हो जाए वो भी मानते, पहले के समय में ऐसा था, परंतु आज जो ये काल है, जो व्याल है, वो सड़क पर घूमने वाला रास्ते पर घूमता है, पता नहीं कुछ हो जाए। और आध्यात्मिक हमारे भीतर ही भीतर कुछ ताप आते हैं, आ रही है बीमारी है। एक होती व्याधि, एक होती आधी। आधी और व्याधि, व्याधि तो अपने आप आ जाती है, वो पता लगता नहीं है। होते नहीं कहीं बोलते हैं कि एक रोग आता है और एक चिंता आती है, ये भी एक रोग है। तो ये तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनाश करने वाला वो परमात्मा है जिसको हम लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। और उसी में हम लोग उसी का एक थोड़ा सा भजन या संकीर्तन श्रवण करेंगे तो थोड़ा सा ये जो गरिष्ठ खाया है ना उसको थोड़ा सा पचाने में आसानी होगी।
श्री राधे गोविंद भजन, श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोविंद भजन, श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजन, श्री राधे।
ऐसा विशुद्ध तत्व भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में अवतरित हो जाए, प्रकट हो जाए, उसके लिए भी कोई ना कोई माध्यम चाहिए। परमात्मा को जानना हो आप पुस्तक पढ़ के भी जान सकते हैं, परंतु जिसका ज्ञाता हो, उसका जानकार हो, उसको समझा हुआ हो, ऐसा सद्गुरु हो, वो जो परमात्मा तत्व आपके भीतर ऐसा आ जाता है जैसे आपके हाथ में आंवले का फल। ऐसा सद्गुरु कौन? तो श्रीमद् भागवत में जो आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं जिस परमात्मा के विषय में, उसके सद्गुरुदेव है सुखदेव जी महाराज, उनको ही वंदन करना चाहिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजिवाव पुत्रीति तन्मयतया तरोऽभिनीव तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेत उपेत कृत्यम्। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी प्रकाश से हमारा हृदय प्रकाशित किया है, इस जगत को प्रकाशित किया है, ऐसे सुखदेव जी महाराज जी को हम लोग नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज का क्या स्वरूप है वो भी जानना आवश्यक है, किसी वस्तु जानने के लिए उसके स्वरूप को भी जानना आवश्यक है। केवल हम कहेंगे कि सच्चिदानंद स्वरूप है, उतने से काम नहीं बनेगा। वो कैसे है, क्या करता है, उसका क्या कार्य है, ये भी समझना पड़ेगा। वो जो बतलाने वाले सदगुरु हैं, हमारे यहां सदगुरु की बड़ी भारी महिमा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, हम लोग बोलते हैं ना। उस सदगुरुदेव का जो स्वरूप है वो अलौकिक है, परंतु यहां पर जो भागवत अपने को सुनाने वाले हैं ऐसे सदगुरुदेव जो सुखदेव जी महाराज है। यम प्रव्रजंत मनोपेत उपेत कृत्यम, अभी अभी जन्म हुआ है। कहते हैं कि संसार के डर के मारे 16 वर्ष तक वो मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। संसार दुखदायी है। व्यास जी महाराज ने बड़ी ही प्रार्थना की, बड़े ही उनका निवेदन किया कि आप बाहर पधारो। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर आते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने ध्यान में मग्न होने के लिए, वो वहां से चल पड़ते हैं वन की ओर। यम प्रव्रजंत, प्रव्रजंत वहां से चल देते हैं, और वहां पर कोई संस्कार नहीं हुआ। देखो अपने वैदिक सनातन धर्म की बड़ी विशेषता, हमारे यहां पर कोई भी बालक अगर जन्म लेता है, उसको सनातनी होने के लिए, हिंदू होने के लिए कोई संस्कार की जरूरत नहीं है। उसको ब्राह्मण होने के लिए, हो सकता है उसको द्विज बनने के लिए यज्ञ पवित्र धारण करना पड़ सकता है, परंतु ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा होता है, जिसका जन्म होता है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो हिंदू है ब्राह्मण है, द्विज होने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अभी सुखदेव जी महाराज जी का यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ है, और वो कहां चल पड़े, वन की ओर चल पड़े। वेद राज्य ने कहा कि ये तो हमने कहा कि चलो पुत्र बाहर आ जाए, हमारा कुछ कल्याण करेगा, हमारा वंश चलाएगा, परंतु ये तो विरक्त बन गया। और वन की ओर जब जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे हे सुखदेव हे सुखदेव हे सुखदेव, व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं सुखदेव जी को, परंतु सुखदेव जी महाराज उस ब्रह्म में लीन है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, ऐसे जो महापुरुष प्रकट होते हैं कुल पवित्र हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती जीन अपार संवित सुख सागर लीनम पर ब्रह्मण यश्च चेतः, जिसका जो चित्त है मन है वो परब्रह्म में लीन हो जाता है, ऐसे महापुरुष को सर्वत्र उस परमात्मा का ही दर्शन होता है। उनके पिताजी आवाज लगा रहे हैं हे सुखदेव हे सुखदेव हे सुखदेव, उनको उससे कोई फर्क अंतर नहीं पड़ रहा है, परंतु वहां पे जो वृक्ष हैं, वहां से वो वृक्ष आवाज दे रहे हैं, हे पिताजी वृक्ष सुखदेव जी की तरफ से वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, हाँ पिताजी हाँ पिताजी। क्योंकि उन ऐसे महापुरुष का जो चित्त था उस पर पूर्ण परब्रह्म में एकाग्र हो गया था। तो कहते हैं कि वो जो ऐसे महापुरुष है, पुत्रे यदि तन्मयतया तरो विदेधो तम सर्वभूत हृदयम्। ऐसे जो महापुरुष थे, ऐसे जो महापुरुष है सुखदेव जी महाराज, उनका जो चित्त है वो व्यापक बना हुआ है। जो संत होते हैं ना संत, समशत्रोचे मित्रे च तथा मानापमानयो हो तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी, उनको कुछ पड़ी नहीं है कि हमारी कोई स्तुति करता है कि हमारी कोई निंदा करता है, कोई मुझे अच्छा कहता है वो हमें बुरा कहता है, उनको कोई पड़ी नहीं है। वो सर्वभूत हिति रता, उनका एक ही होता है कि सभी भूतों का कल्याण हो। ऐसे सुखदेव जी महाराज वहां से वन की ओर जो प्रस्थान करते हैं और पिताजी जो पुकारते हैं, तो उनकी ओर से जो वहां के वृक्ष हैं वो आवाज दे रहे हैं, हे पिताजी हे पिताजी। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे जो मुनि सुखदेव जी महाराज है, जो हम लोगों को भगवत दर्शन कराने वाले हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। ये सद्गुरुदेव को नमस्कार है, द्वितीय नमस्कार सद्गुरुदेव को, और कहीं कहीं तो सद्गुरुदेव को प्रथम नमस्कार होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े राके लागो पाओ, बलिहारी गुरुदेव लियो गोविंद दिखाए, कहीं कहीं तो वो भी है। हमारे यहां तो दोनों परंपरा है, सदगुरु को प्रथम वंदन है, परंतु सदगुरु भी उसी का स्वरूप है जिसने ये जगत बनाया, इसलिए उस परमात्मा को जो दिखाने वाला है उसको भी वंदन। ऐसे सदगुरुदेव का वंदन करते हुए और एक स्थान पर जिसका नाम नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, कल के प्रसंग में और आएगा। वहां पर शौनकादि ऋषि, यहां पर उल्लेख किया है, शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और वहां पर सूद जी महाराज पहुंचते हैं। सूद जी कथा कहने में बहुत कुशल है, कोई कोई कुशल होता है, कहते हैं कि कोई दुनिया में सब वक्ता नहीं हो सकते हैं। हमारे यहां तो सुनते सुनते कई एक वक्ता हो गए, अभी हमारे गिरीश भाई तो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं। और एक बार मैं अमेरिका में था तो मेरे पास प्रकाश भाई का फोन आ गया, काले मारो व्याख्यान छे तुम्हें कहीं संभाल, तो अच्छी बात है। लेकिन जब पहली बार जब माइक आता है ना पास में, तो उसका सब कुछ हिलने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्याख्यान सबसे नहीं होता है, वो कुशल वक्ता होना चाहिए और आपको उस बात को समझाने में वो सक्षम होना चाहिए। जब हम लोग बच्चे लोग जब स्कूल में जाते हैं तो वहां पर कोई अर्धज्ञानी अगर वहां का अध्यापक होगा, और आजकल लगभग वैसा हो गया है। कभी कभी देखते हैं सर्वे करते, आजकल जो ये मीडिया है ना, ये संचार माध्यम, उसका स्वरूप कुछ अलग बदला हुआ है। तो अच्छे अच्छे अध्यापकों के पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि आपको राष्ट्रगीत आता है? बहुत अध्यापकों को राष्ट्रगीत भी नहीं आता है। ऐसा अर्धज्ञानी पंडित क्या सुनाएगा, क्या समझाएगा? ईश्वर ज्ञानी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए तब जाकर के, और वो कुशल वक्ता होना चाहिए। और कुशल वक्ता है सूत जी महाराज, क्योंकि उन्होंने व्यास जी महाराज से इन पुराणों का अध्ययन किया था, इसलिए अपने यहां पर परंपरा गुरु परंपरा है। जो मनमुखी होकर के बोलते हैं फिर उनका तो क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, जो परंपरा से हैं वो टिकाऊ होता है, वो हमेशा रहने वाला होता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं जो मनमुखी होते हैं वो पतंगी की तरह थोड़ी देर के लिए आते हैं, फड़फड़ाते हैं और विलीन हो जाते हैं। जैसी ये संस्था, इसकी मूल संस्था वर्षों से चल रही है, कोई विकार नहीं, क्योंकि इसका कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी संस्थाओं का कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें कोई भाव ऐसा स्वार्थ का नहीं होता है, इसमें परमार्थ का भाव होता है। और जहां केवल परमार्थ का भाव होता है वहां पर कभी विकार आ ही नहीं सकता है। ऐसे परंपरा से जिन्होंने वेदाध्ययन किया था, शास्त्र का अध्ययन किया था, ऐसे सूत जी महाराज को शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, ये भयंकर कलयुग आया है और कलयुग में अपने को क्या करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। तो सूत जी महाराज और फिर कहते हैं कि इस जगत में कई चीजें हैं, उन्होंने भी कुछ अपने उन सूत जी महाराज जी का स्तुति करते हुए कहते हैं कि इस जगत में एक चिंतामणि नाम का एक मणि होता है। चिंतामणि आपको मिल जाए तो आपके मन में जो भी विचार हो, जो आप जिसका चिंतन करें वो आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन चिंता में मिले कहां, हम सब चाहते हैं कि मिल जाए, कौन नहीं चाहता है हमको सब कुछ मिल जाए। परंतु कहते हैं कि जो चिंतामणि मिल जाने से केवल आपको वो इच्छित पदार्थों का ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा है, एक कल्प वृक्ष है दुनिया में, ये सुना हुआ है, हम जितने लोग बैठे हैं यहां पर शायद इन्होंने किसी ने उसके नीचे कोई बैठा नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं, देखा किसी ने जो ही उसे कह रहे नहीं, हम लोगों ने उस कल्प वृक्ष को भी नहीं देखा। उसकी बड़ी कथा है, एक आदमी को एक कल्प वृक्ष के नीचे सोया, उसको बड़ी भूख लगी थी, उसने सोचा कि यहां कुछ खाने को अच्छा मिल जाए, तो तुरंत वहां पर बढ़िया बढ़िया पंच पकवान की थाली आ गई। जब वो तृप्त हो गया उसने सोचा बढ़िया सुंदर जल आ जाए, तो बड़ा सुंदर, आजकल का नहीं होगा, उस समय पहले का जल होगा, आजकल तो ये मिनरल वाटर आया ना, ये उस समय ये बोतल नहीं होगी, ये तो 10-15 साल पहले की है, सुंदर जल। उसने सोचा कि ये तो भोजन भी आ गया, जल भी आ गया, अब कुछ सोने की व्यवस्था हो जाए, तो वहां पर पलंग भी लग गया। उसने कहा कि कमाल है, जैसे ही लेटा उसने सोचा कि ये सब तो आ गया, कहीं शेर ना आ जाए, तो वो भी पहुंच गया। उसने सोचा खाना जाए, और फिर तो ऐसे कल्प वृक्ष की भी अपने को अगर मिल भी जाए उसका क्या उपयोग, परंतु सद्गुरुदेव मिल जाए तो कहते हैं वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते हैं कि ऐसे अगर सद्गुरुदेव मिल जाते हैं तो जो भगवान श्री कृष्ण के भगवान सदा उनके धाम को प्राप्त कराने वाले होते हैं, ऐसे आप सद्गुरुदेव हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ सुनाइए। और उस समय सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में आपको श्रवण करने के लिए कहते हैं कि अनेक प्रकार के, परंतु एक सुखदेव जी ने जो जिस कथा को कहा था वो कथा अमृत समान है, और उस अमृत समान कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। कहते हैं कि ये सब मृत्यु लोक में ही सब सुलभ है, भगवान का भजन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य सब कुछ इस मृत्यु लोक में ही ये सुलभ है। आप स्वर्ग जाएंगे तो केवल वहां पर आप अपने किए हुए पुण्य का उपयोग कर सकते हैं, नया पुण्य वहां पर पैदा नहीं कर सकते हैं। जो कहते हैं कि इस जगत में आप ये जो अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो सुखदेव जी महाराज ने की हुई कथा ये देवताओं को भी दुर्लभ है, परंतु आप लोग उस कथा को श्रवण करेंगे उसकी बड़ी भारी महत्ता यहां पर बताई। सुखदेव जी महाराज जी के पास देवता पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमें आप सुनाइए, अगर आप राजा परीक्षित को आप अमृत आप उनको मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो हम उनको अमृत पिला देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये नहीं है, ये कहां तो ये कांच और कहां हीरा, तुम लोग यहां से चले जाओ। इस प्रकार का जो अमृतमय जो ये पुराण है, ये भागवत है, ये कहते हैं कि इस कली काल में सबसे सरल उत्तम उपाय है, और कहते हैं कि यही एक बार सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था। इस श्रीमद् भागवत के माध्यम एक नारद जी भी है, नारद जी के माध्यम से हमें ये परंपरा श्रवण करने को मिलती है। तो कहते हैं कि नारद जी को ये कहां सुनने को प्राप्त हुआ, तो सूत जी कहते हैं एकदा ही विशालायाम, एक बार की बात है, चत्वारा ऋषयः मला, बोलते हैं कि जो चार ऋषि सनातन ये चारों ऋषि, विशाला का मतलब है बद्रीनारायण में विराजमान है, इसलिए वहां पर बैठे हैं, कोई गपशप मार रहे हैं कह नहीं, वहां पर इसलिए गए हुए सत्संगार्थम समायातम, ऋषि चार ही हैं, उस तुलना में हम लोग तो बहुत हैं, यहां पर चार ऋषि हैं और चारों ही भ्रमण करते हैं, परंतु बैठे हुए बद्रीनाथ में सत्संगार्थम, इसलिए बैठे हैं वो सत्संग के लिए बैठे हैं, और सत्संगार्थम समायातम दत्र सुस्तश्च नारदम, वो सत्संग कर रहे थे, तीन ऋषि श्रोता बने हुए हैं और एक ऋषि सत्संग करा रहे हैं, और कौन सा सत्संग, ऋषि अगर सत्संग करते हो मंत्र दृष्टा रहा ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, जो हमारे पास वेद जो आए हैं उपनिषद आए हैं, ये ऋषियों ने अपने ध्यान में देखा और उन्होंने उसको प्रकट किया, मंत्र दृष्टा होते हैं, और ये तो सनकादि ऋषि है और वहां पर सत्संग कर रहे हैं, दिशावाश्यमिदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत परमात्मा का है, इसके सिवाय कुछ नहीं है, नेहि नानास्ति किंचन, सर्वम खलिदम ब्रह्म, जगत संपूर्ण ब्रह्म है, ऐसी कथा कर रहे थे तब तक उन्होंने नारद जी को देखा, वहां पर नारद जी को देखा, और नारद जी को देख करके ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे नारद जी आपका मुख मलिन क्यों है, नारद जी तो सदा त्रिलोक में भ्रमण करने वाले, ऋषियों ने पूछा कि आपका मुख मलिन क्यों है, तो नारद जी ने अपनी व्यथा कही, और व्यथा ये कही कि मैंने सर्वोत्तम जानकर के ये पृथ्वी को, पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया, पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु पृथ्वी पर जब भ्रमण कर रहा था तो वहां पर जो मुझे देखने को मिला सभी तीर्थ दूषित हो गए हैं, वहां पर अभी तीर्थों में तीर्थत्व नहीं रहा, बोले सब जगह मैं गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र गए कुरुक्षेत्र गए, और साथ साथ में श्रीरंगम सेतु वंदनम गए, वहां सब रामेश्वर गए, सब जगह गए, परंतु वहां पर मैंने कभी, कहते कि वहां पर जो कोई अब तीर्थ में सत्व नहीं बचा। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कब वहां पर कहा गया होगा, तब की बात ऐसी थी, और हम लोग अपने बचपन में भी देखते थे, इस देश में नदियां झरझर बहा करती थी, झरने बहा करते थे, परंतु अब वो धीरे धीरे सब लुप्त तो हो रहे हैं। हमारे भारत में जो तीर्थ थे, मैं बताऊं जब हम पहली बार गए थे पुष्कर राज, तो वहां का जो सरोवर था बिल्कुल वो तो पुरद भरा हुआ था। अब जाकर के देखो तो वहां पर जल ही नहीं है। नारायण सरोवर में जाकर के देखो तो वहां पर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने जाया करते थे। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं सब तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, परंतु वहां पर हमें तीर्थत्व नहीं मिला। सब दूषित हो गए हैं, देवालय खंडित हो गए हैं। मैं देख करके बड़ा दुखी हुआ, परंतु एक दृश्य मैंने ऐसा देखा। दृश्य ये था, एक तरुणी और एक तरुणी अपने दो पुत्रों के साथ में एक जगह वृंदावन में वहां पर विलाप कर रही है, और उसके चारों ओर बड़े बड़े तीर्थ नदियां सब वहां पर विद्यमान थे। मैंने भी दूर से देखा, और दूर से देखा वहां पर भीड़ लगी हुई थी, परंतु उस तरुणी की दृष्टि मेरे पर पड़ गई और तरुणी ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे संत, हे नारद जी, थोड़ा सा रुकिए और मेरी चिंता का निवारण करिए। मैं कहते कि मैं वहां पर गया और मैंने वहां जाकर के देखा वो तरुणी बड़ी दुखी है, और तरुणी दुखी है इसका कारण यह था कि जो वृंदावन में वो तरुणी, वो भक्ति माता, उसके दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य, और दोनों की जो दशा ऐसी हुई है जैसे पुत्र है उनका, परंतु वो जैसा लगा कि वो बड़े वृद्ध हो गए हैं, बड़े दुर्बल हो गए हैं, और अपने पुत्र दुर्बल हो जाए तो मां कभी सुखी हो नहीं सकती। ये मां का स्वभाव है, माता का स्वभाव है कि चाहे वो खाए चाहे न पिए, परंतु पुत्र हमारा भूखा न रहे, पुत्र हमारा दुखी न हो, ये मां का हृदय होता है, और वही हृदय भक्ति मां का है। और भक्ति मां कहती है कि हे संत, हे नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि देवी आप कौन हैं? देखो नारद जी को भी सब पता है, भक्ति को भी सब पता है, परंतु हम और आपको पता नहीं था ना, इसलिए नारद जी ने जानबूझकर पूछा कि आप हो कौन, प्रकाश भाई कौन है, तू कौन छे, सांभळजो बरोबर, सुनने लायक है। भक्ति अभी है, परंतु उसके जो पुत्र हैं वो रुग्ण हैं, उनकी दशा बड़ी खराब है, उठ नहीं सकते हैं। वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य, सबको पता है ना सर। इसलिए मैंने कहा कि हम तो एक निमित्त मात्र बनकर के आपको सुना रहे हैं, आपको सब पहले से पता है। तो देवी को पूछा कि देवी आप है कौन, क्या है? तो देवी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, भक्ति माता अपना परिचय दे रही है। जैसे आपको कोई पूछे कि कहां से आए हो, बोले हम यहां बोलेंगे, हम कोई बोलेगा साउथ बॉम्बे से आए हैं, कोई बोलेगा हम नॉर्थ से आए हैं, ऐसे बोलेंगे ना। कोई बोले हम कुलाबा की तरफ से आए हैं, कोई चर्चगेट की तरफ से आए हैं, कोई कहेगा कि हम दादर से आए हैं, कोई विले पार्ले से आए हैं, कोई कांदीवली से आए हैं, ऐसा बोलेंगे ना, अपना परिचय हुआ। भक्ति माता अपना पूर्ण परिचय दे रही है। उत्पन्ने द्रविड़े साहम, वृद्धिम कर्नाटके गतः। मेरी उत्पत्ति, भक्ति की उत्पत्ति वहां होती है जहां पर उसको भक्ति को भक्ति करने वाले होते हैं। भक्ति का जहां पर यजन होता है, भक्ति के द्वारा परमात्मा की जहां आराधना होती है, वहां भक्ति प्रकट होती है। तो उत्पन्ना द्रविड़े साहम, उन्होंने कहा कि मैं उत्पन्न में द्रविड़ में हुई, द्रविड़ देश अपने यहां पर, एक हमारा उत्तर भारत आर्य और दक्षिण भारत द्रविड़। और आप देखना जितने आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, कोई भी आचार्य हो वो सब दक्षिण से आए हैं। इसलिए भक्ति कहती है कि जहां पर मेरी आराधना होती है, नवदा भक्ति का तो परिचय दिया था भगवान श्री राम ने, किसको, शबरी को,
प्रथम ही भगति संतन कर संगा,
कहा संतों का संग करो, नवदा भक्ति। फिर भगवान आगे चलेंगे, प्रहलाद जी भी अपने पिताजी को कहेंगे कि ये ऐसा करो, ये तो आगे प्रसंग आएगा। तो जहां परमात्मा की आराधना होती है, जहां उनकी स्तुति होती है, गान होती है, उनके विषय में चिंतन किया जाता है, वहां पर भक्ति अनायास प्रकट होती है। तो भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई,
वृद्धिम कर्नाटके गता,
उस समय की बात है, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई, वो भी दक्षिण प्रांत है।
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र,
भगवत भक्ति कहती है कि क्वचित क्वचिन, थोड़ा यहां पर दोनों प्रसंग है, क्वचित का मतलब इधर भी होता है, क्वचित मतलब उधर भी होता है, दोनों यहां दोनों का संबंध है।
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता,
तो वहां दोनों प्रसंग आते हैं, गुजरात में भी महाराष्ट्र में भी, कुछ महाराष्ट्र में और कुछ गुजरात में।
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता,
भक्ति ने आपने वेदना कही, अब ऐसा तो लगता नहीं है, अब आजकल देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये भागवत में लिखा है, अब उसको हम कैसे नकार सकते हैं। तो ये बड़ी थोड़ी सी दुविधा वाली बात है, लेकिन भक्ति कह रही है कि क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुरुजरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात में जाकर के वृद्ध हुई। और बहुत से लोग उसका अर्थ लगाते हैं, जो वृद्ध होता है ना वो परिपक्व होता है। वृद्ध का मतलब ये नहीं है कि उसकी आयु हो गई, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, और वही अनुभव आप दुनिया को कहेंगे। इसलिए जो हमारे यहां पर दो बात कहते हैं, जो विद्वान होते हैं ना, कहते हैं कि वयोवृद्ध, एक होता है वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होते हैं ना, एक होता है केवल वयोवृद्ध, एक होता है तपोवृद्ध, जिसने अपने जीवन में ध्यान भजन किया हो, भगवान का पूजन किया हो, व्रत उपवास किए हो, ऐसा भी एक वृद्ध होता है, चाहे उसकी आयु भले छोटे हो। और एक होता है ज्ञान वृद्ध, हमारे यहां पर ज्ञान वृद्ध कोई सामान्य लोग नहीं हुए, भगवान शंकराचार्य अष्ट वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष में ही वो चतुर्वेदी हो गए थे, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, वो 12 वर्ष के जब हुए तो सभी शास्त्र के से पारंगत हुए थे, 16 कृतवान भाष्य, यहां पर विधर्मी लोग आकर के हमारे सनातन धर्म को समाप्त किए थे, परंतु उन्होंने अपना भाष्य लिखा 16 साल में, और पुनः सुधर्म की स्थापना की, वैदिक धर्म की स्थापना की। तो ज्ञानवृद्ध होने में आयु की ज्यादा जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसलिए वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध, और जो वृद्ध होता है, जो अनुभवी होता है, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं। भक्ति माता उत्पन्न हुई द्रविड़ में, परिपुष्ट हुई कर्नाटक में, और कुछ महाराष्ट्र में, और कुछ गुजरात में, वहां पर वृद्ध हुई, परिपक्व हुई। परंतु जब भक्ति को हम लोग ज्यादा कहते हैं, ज्यादा उसी के आधार पर हम लोग अपना कोई ना कोई साधन करते हैं, परंतु उसके दो पुत्र हैं, भक्ति के दो पुत्र हैं, क्या, ज्ञान और वैराग्य। जब तक आपको वैराग्य नहीं होगा, तब तक आपको इस जगत की समझ नहीं आएगी, तब तक आप इस जगत को समझ नहीं पाएंगे। और वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी वैराग्य, वो तो एक होता है श्मशान वैराग्य। हम लोगों को श्मशान वैराग्य तो हो जाता है, वो भी आजकल नहीं हो पाता है। बहुत लोग, हम लोग तो नहीं जा पाते, लेकिन लोग कहते हैं कि आजकल स्मशान में लोग जाते हैं, वहां भी मोबाइल लेके जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते वो मुझे पता नहीं है, जो जाते ले देखते होंगे वो मुझे बताना, शायद जाते होंगे, क्योंकि मोबाइल के बिना आजकल रहना ही मुश्किल है। पता नहीं कैसा समय आता है, कभी कभी समय आ जाता है और वहां पर भी आजकल वैराग्य नहीं हो पाता है। जो हमारे यहां पर शास्त्रों ने कहा है कि स्मशान वैराग्य, स्मशान में जाने के बाद पहले वैराग्य होता था कि कुछ नहीं जाना है, सबको छोड़ के जाना है, और वहां से आ गए उसके बाद में फिर कुछ नहीं। परंतु आजकल ये जो ये है ना खिलौना, वहां भी वैराग्य को नहीं होने देता है। और वहां पर किसी का फोन आया और तुम्हारा काम बन गया, वहां पर हंसी आ जाती है, हाँ काम बन गया, भले है स्मशान में, परंतु आपको वहां पर भी वैराग्य वो होने देता नहीं है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये पुष्ट होने चाहिए, और ये मां कहती है कि ये हमारे ज्ञान और वैराग्य है, ये यहां पर आकर के वृद्ध हो गए हैं, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करें। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नारद जी ठहरे ज्ञान वैराग्य संपन्न, उन्होंने कहा कि चलो हम आपकी जो आपका कष्ट है इसको दूर निवारण कर देते हैं। और भक्ति ने बड़ा उनका सम्मान किया, बड़ी उनकी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में कहा कि संत तो परोपकारी होते हैं, परोपकार ही संतों का स्वभाव है, परोपकारा स्वामी भूतया, परोपकार के लिए तो संत होते हैं। फिर नारद जी ने विचार किया कि चलो इनको कुछ सुनाया जाए। तो नारद जी ने जो ज्ञान और वैराग्य के कान के पास में उन्होंने अपना मुंह लगाया और वहां पर कहने लगे, हे ज्ञान, हे वैराग्य, आप उठ जाओ, आप सुनो। नारद जी कह रहे हैं और जिसको कहते हो निश्चित रूप से प्रभाव होना ही है, परंतु वहां पर नारद जी की बात सुनने के बाद में थोड़ी आंखें तो खोलते हैं ज्ञान और वैराग्य, परंतु फिर से आंखें मूंद लेते हैं। नारद जी भी चिंतित हो गए और नारद जी ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। नारद जी ने विचार किया कि चलो तपस्या करनी चाहिए, पहले पूछ लेते हैं लोगों से कि इसका कोई उपाय हो। तो नारद जी सब जगह जाने लगे, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी, उनके पास जाने लगे। नारद जी से पूछते कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। आजकल नारद जाते तो कोई समस्या का कोई भी निदान बता देता उनको। आजकल हमसे किसी से पूछ लेते किसी के, अरे अपने यहां देश में उपदेशक बहुत है, आप एक बताओ तो चार बार बताएंगे। और एक किसी आपको अगर सर्दी जुकाम हो जाए, किसी पड़ोसी को पता लग जाए कि आपको 10 दवाई तो आपके सामने निश्चित है, ये लो तो ठीक हो जाएगा, वो लो तो ठीक हो जाएगा, वो लो तो ठीक हो जाएगा, है ना। परंतु वहां पर जब देखा कि नारद जी स्वयं आए हैं तो सब लोगों ने असमर्थता प्रकट की कि हे नारद जी, जब आप जिस बात को नहीं जानते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। ये है सज्जनता। संत हमेशा सज्जनता को स्वीकार कर लेते हैं। संतों में गुण है, संत का मतलब है सज्जन व्यक्ति। ऐसा नहीं समझना कि जो वस्त्र पहना हुआ वही संत हो, जिसके भीतर जिस व्यक्ति में सामने वाले का कल्याण हो, सामने वाले का भला हो, वो व्यक्ति संत में उसका नाम गिना जाता है, चाहे वो कोई भी वस्त्र पहनता हो। और अगर वस्त्र कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर उसके अंदर वो गुण नहीं है, उसको संत नहीं कहा जाता है। ये हमारी परिभाषा है। तो संत लोग जा रहे हैं, इसलिए कभी कभी आजकल अपने देश को भी लगता है कि अपने देश को हो क्या गया। हमारे शास्त्रों में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, जीवन में कोई उतारने को तैयार नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं कि वो देश अच्छे हैं, परंतु बहुत से लोग पश्चिम के देशों में जाते होंगे, वहां पर झूठ कम बोलते हैं, वहां पर झूठ कम बोलते हैं, और हमारे यहां पर बोलते हैं सत्यम ब्रूहिया। हमारे यहां पर कहा जाता है कि सत्य बोलो, असत्य हम क्यों बोलते हैं ये हमें पता नहीं। और ये दुष्ट मोबाइल ये बहुत असत्य बुलवाता है। अब आप लोग नहीं बोलते होंगे उसको, मैं यहां बैठे उनकी भी बात नहीं कहता हूं, लेकिन हाई ऐसी जो यंत्र ऐसा है, हम कहां हैं ये बताने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है कि हमारी मीटिंग चल रही है। आप किस कहां मीटिंग चल रही है वो दूसरी बात है, लेकिन ये हमें क्या बोलता है, सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है। संत लोग झूठ नहीं बोलते, पहला स्वभाव। किसी संत के पास जाओ, उसको आता होगा तो आपको बोलेगा ये सही है, और उसको अगर ज्ञान नहीं है। हमारे यहां पर एक स्वाध्याय परंपरा है, और स्वाध्याय में प्रश्न और उत्तर, शंका और समाधान, हमारे यहां पर पूर्व पक्ष और सिद्धांत उसको कहते हैं। आप लोग सब यहां पर स्वाध्याय श्रवण करते हैं। स्वाध्याय में बड़े बड़े शास्त्रों का चिंतन होता है। यहां पर प्रेमपुरी में भी स्वाध्याय चलता है, बड़े बड़े महान महान ग्रंथों का, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, ऐसे ग्रंथों का यहां पर स्वाध्याय होता है। और उसमें कभी कभी कोई प्रसंग ऐसा आता है, वो जो वक्ता है उसको भी पता नहीं होता है। अगर कोई प्रश्न आपने कर दिया, उस वक्ता को भी ठीक ठीक पता नहीं होता है सिद्धांत। वो वक्ता बोलता है इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, पहले मैं खुद जानूं, उसके बाद में मैं आपको बतलाऊंगा। ये होती है हमारी परंपरा, ये होता है संत का स्वभाव। नारद जी सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नारद जी हमें तो पता नहीं है, नारद जी सब जगह भ्रमण करते हैं। और कुछ लोगों ने देखा कि नारद जी आए तो वहां से उठ के खड़े हो गए। अरे क्या पूछेंगे, पता नहीं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि अब मैं तप करूंगा, और जो तप करने की बात आई तो नारद जी विचार कर रहे थे, और तब तक आकाशवाणी हुई। ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य चल रहा है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के लिए प्रसंग चल रहा है। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या, सत्कर्म करने के लिए नारद जी को जब आदेश हुआ, उस समय भ्रमण कर रहे हैं। अब सत्कर्म क्या है, तो वहां पर भ्रमण करते 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 नारद जी पहुंच जाते हैं विशाला, बद्री विशाला में, और वहां पर भेंट होती है सनत कुमार आदि से। संतों से भेंट होती, संत की भेंट संत से हो तो वहां से उत्पन्न क्या होगा, वहां से परमात्मा ही उत्पन्न होगा, ज्ञान ही प्रकट होगा। इसलिए जो सत्पुरुष होते हैं वो अन्यत्र अपने समय को व्यर्थ करने के बजाय वो किसी महापुरुष के साथ में जाकर के अपना समय वहां पर व्यतीत करना चाहते हैं। और वहां पर संतों से भेंट हुई, सनत कुमारों से भेंट हुई, और सनत कुमार आदि ने कहा कि हे नारद जी आप चिंता मत करो। जिसके अंदर सामर्थ्य होता है ना, तो उसके पास आप जाओ तो आपको चिंता मुक्त कर देगा। परंतु बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सामर्थ्य होने पर भी वो कुछ नहीं करते हैं, ये संसारिक लोग होते हैं। और मैं तो जो मैंने जो विश्लेषण किया, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े लोग जिसके पास ज्यादा धन होता है वो ज्यादा बड़े भिक्षुक होते हैं, कि उनको उतनी कमी होती है। एक साधारण व्यक्ति को 100-200 रुपए की आवश्यकता होती है तो उसको उतने से उसको संतोष हो जाता है, लेकिन जिसके पास में करोड़ों अरबों हैं, एक है ना यहां का कोई उद्योगपति था जो विमान चलाता था, वो आजकल कहां जाके बैठा है विमान में बड़ी संपत्ति 9000 करोड़ रुपया। ऐसे लोगों का नाम लेके भी अपने वाणी को ही दूषित करना है। परंतु जो बड़े लोग होते हैं, परंतु जो संत होते हैं, उनकी अपने पास जो होता है आपको संतुष्ट करते हैं, आपको समाधान प्रदान करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि हे नारद जी, आप चिंता न करो, आपका जो कष्ट है ये दूर हो जाएगा। और जो सत्कर्म जो आपको वाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म का मतलब होता है श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण करो। और श्रवण कौन कराएगा? यहां तो नहीं, यहां तो हर साल आप लोग बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर विद्वान वक्ताओं को बुलाते हैं, आपको तो इंटरनेट पे मिल भी जाते हैं, कभी टीवी में भी देखने में आता है कि ये अच्छा बोलते हैं। और उस समय तो काल में तो बड़ी मुश्किल थी। कहा कि वो आपको श्रीमद् भागवत कथा हम ही श्रवण कराएंगे। बोले कहां श्रवण कराएंगे? बोले जाओ अब गंगा तट पर जाकर के, आनंद नाम का जो तट है उस पर जाकर के आप तैयारी करो। और तैयारी जब करो वहां पर सबको बताना। और नारद जी ने तैयारी शुरू कर दी और निश्चित बता दिया कि जब हरिद्वार के तट पर जाकर के, आनंद नाम के तट पर जाकर के आप तैयारी करो। वहां पर नारद जी ने बड़ी सुंदर तैयारी की, जैसे इस बार यहां पर प्रेमपुरी में बहुत लोगों ने बहुत सुंदर तैयारी, और हर साल करते हैं, सबको पता लगा, ऋषियों को, मुनियों को, केवल उतने ही नहीं शास्त्रों को पता लगा, उपनिषदों को पता लगा कि सनकादि ऋषि आने वाले हैं। अवसर सामान्य नहीं था। अगर यहां सुखदेव जी महाराज साक्षात आ जाए तो कौन यहां नहीं आएगा भागवत प्रेमी, फिर तो यहां हो ही नहीं पाएगा। साधारण वक्ता जो आपको कानों को सुंदर सुंदर बातें सुना करके आपको प्रसन्न करता है, उसके लिए भी बड़े बड़े पंडाल की आवश्यकता होती है। और कभी कभी सत्य श्रवण करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। आज प्रातःकाल जहां से पोथी यात्रा निकली थी, उस मंदिर में जब हम गए, बहुत प्राचीन मंदिर है, परंतु जाने वाले बहुत कम लोग, क्योंकि यथार्थ है ना, यथार्थ। और जो यथार्थ होता है ना, वो सबको पचता नहीं है। जो सत्य होता है वो सबको प्रिय लगता नहीं है। जहां दिखावा होगा वहां हमें ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ी समस्या है। हम उसका विरोध नहीं करते हैं। सुनते हैं कि अमुक अमुक मंदिर में जाकर के लोग हुंडी में दान दे के आते हैं। पहले डालते थे, अभी आजकल शायद कम हो गया होगा, जब से मोदी जी ने वो जो लाल वाले नोट बंद किए ना, शायद उसके बाद में थोड़ा आप सुनने में कम आता है। वो पैसा कहां जाता है ये आपको पता नहीं है। इसलिए आप श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान आपके कल्याण का करने वाला होता है। इसलिए कहते हैं कि वहां पर सभी लोगों ने श्रवण किया कि वहां पर सनकादि ऋषि आ रहे हैं, तो वहां पर शास्त्रों ने भी स्वरूप ग्रहण कर लिया, शास्त्रों में भी साक्षात रूप ग्रहण कर लिया। और सब के सब लोग गंगा तट की ओर, कहां? हरिद्वार में, हरिद्वार की ओर सभी लोगों ने प्रस्थान कर शुरू कर दिया। और वहां पर बड़ा भारी सुंदर मंडप सजा, और मंडप सजने के बाद में सब लोग, ऋषि मुनि सब बैठे, धर्मशास्त्र बैठे, बड़े बड़े महान पंडित बैठे। और उस समय वहां पर कथा का प्रारंभ होने वाला था। और जब कथा वहां पर शुरुआत होने वाली थी, कहते हैं कि वहां पर एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? कहते हैं कि उसी समय भक्ति सुतौ तौ
तरुणो गृहीत्वा।
भक्ति तो ऐसी तरुण थी, परंतु अपने पुत्रों को वहां पर आकर के एक हाथ में ज्ञान है, एक हाथ में वैराग्य है, और जो भक्ति का जो प्रवेश हुआ, जैसे यहां पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है, उस बड़े भारी मंडप में वहां पर एक छोटा सा स्थान भी रिक्त नहीं था, खचाखच भरा हुआ था मंडप था, क्योंकि साक्षात सनकादि ऋषि उस समय कथा करने वाले थे और उस समय वहां पर सभी वेद शास्त्र वहां पर मूर्तिमंत होकर के बैठे हुए थे, और उस समय भक्ति का जब प्रवेश हुआ, भक्ति का प्रवेश होता है, कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे दीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे दीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा
भक्ति माता संकीर्तन करते हुए मंडप में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, और बार बार कह रही थी, मुहुर मुह वदंती, बार बार कह रही थी। जैसे हम लोग संकीर्तन करते हैं, देखा तो अंदर सभी स्थान बिल्कुल भरे हुए, कोई रिक्त स्थान नहीं है। अब जब व्यासपीठ पर जो बैठा होता है उसको पता लगता है कि कौन आया और कौन गया, आने वाले का ही पता होता है और जाने वाले का ज्यादा पता होता है, लेकिन वहां कोई जाने वाला था नहीं, वहां सब आने वाले थे। यहां प्रतिबंध नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया, किसी को समझाना तो चाहिए, किसी को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कोई और भी विशेष कार्य हो सकता है, महान कार्य हो सकता है। आप किसी को समझाओ परंतु उसको शपथ मत दिलाओ। हमारे यहां शायद ये हुई है कहीं ना कहीं गलती, हमारे यहां पर ये न करो ऐसा करने से ऐसा होता है। हमारे एक बात उस समय शायद होता होगा, देश काल और परिस्थिति बदलती रहती है, देश कैसा है, काल कैसा है, परिस्थिति कैसी है। भगवान वेदव्यास जी, उनका निवास हिमालय था, व्यास गुफा कहा, जहां पर भागवत की रचना हुई, बद्रीनाथ से और ऊंचा सरस्वती के तट पर, वहां पर व्यास भगवान एक बार स्नान करते थे। एक बार, अब एक बार स्नान करना ही कठिन है। हम लोग जब बद्रीनाथ जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि पंडित जी गर्म पानी का प्रबंध है, तो कहे कि नीचे वहां पर गर्म कुंड है ना माता जी, वहां पर जाओ स्नान कर लो। केदारनाथ में जाते हैं तो एक बाल्टी 20 रुपए की मिलेगी, चाल से बेटा कहीं बांधो नहीं, आज एक दिवस चाल से। व्यास जी भगवान वहां पर एक बार स्नान करते थे प्रातः काल, कभी नीचे आना हुआ तो जब देवप्रयाग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चलो प्रातः काल सायंकाल दोनों काल स्नान करके, क्योंकि वहां पर थोड़ी ठंडी कम है, तो दो काल स्नान किया। हरिद्वार में आए तो बद्रीनाथ में रहने वाले व्यक्ति को हरिद्वार में तो गर्मी लगने वाली है, उन्होंने वहां पर तीन बार स्नान शुरू कर दिया। शिष्यों ने पूछा कि भगवान ये क्या बात है, आपके दिनचर्या में ऐसा अंतर क्यों आ गया, आप जब बद्रीनाथ में थे तो एक बार स्नान करते थे, देवप्रयाग में आए तो वहां पर आपने दो बार स्नान स्मरण किया, और यहां पर हरिद्वार में तीन तीन बार या इससे ज्यादा बार भी स्नान करते हैं। कहा कि हे शिष्य, देश काल और परिस्थिति तीन बातें होती है, तो जैसे देश काल और परिस्थिति हो उस प्रकार से व्यक्ति को निर्वाह करना चाहिए। ये कली काल है, भागने वाला समय है ना। अब सबको भागने से तो रोक नहीं सकते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत ऐसा है कि आपको कम से कम यहां पर तीन घंटे तो रोक के रख सकता है। इसमें शक्ति है, इससे आप भाग नहीं सकते। जो भागेगा उसको इससे अत्यधिक कोई आवश्यकता होगी, आवश्यक कार्य होगा तो ही जा सकता है। इसलिए वहां पर जब आए, उन्होंने वहां पर जब भक्ति का प्रवेश हुआ, उस समय भक्ति माता ने पूछा कि अब कहां बैठूं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि भक्ति को दूर से आते हुए देखा, भक्ति को जब देखा तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति, ये जो बैठे हुए हैं ना सब लोग, जो श्रोतागण हैं, क्योंकि जब श्रोतागण भगवान की कथा श्रवण करता है उसका उतनी देर के लिए, उतने समय के लिए उसके अंदर ना काम होता है, ना उसके अंदर क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मद होता है, ना मत्सर होता है, उसके अंदर अंतकरण उसका बिल्कुल निर्मल होता है। देखना इस समय आपके भीतर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। इस समय जब हम भगवान की बातें श्रवण करते हैं, हमारी कामना थोड़ी देर के लिए यहां से समाप्त हो जाती है, हृदय से गायब हो जाती है। कहां जाके बैठती है? अगर नीचे किसी की मर्सिडीज खड़ी हो ना तो उसकी कामना वहां पर बाद में जाएगी कि कोई ले तो नहीं गया, हमारा कोई ट्रेन तो नहीं करके गया कोई, वो बाद में समझता, अभी नहीं। रसन का ऋषि कहते हैं कि हे भगवती, आपने पुत्र और आप स्वयं जो भक्त बैठे हुए, इनका अंतकरण निर्मल है। इस समय इनका अंतकरण बिल्कुल विशुद्ध हुआ है, और जो बचा कुचा था अपने नामस्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जब भगवान का हम चिंतन करते हैं तो पाप जो है वो चले जाते हैं यहां से। हमारे पाप कहां जाते हैं? नष्ट नहीं होते हैं। पाप बड़े समझदार होते हैं, ये नहीं समझना वो बेवकूफ होते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया रामकृष्ण परमहंस जी को कि शास्त्र में लिखा है गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्त था, है ना, गंगा पापों को हरण करने वाले हैं ऐसा है? तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? उनको फिर ऐसा जन्म कर्म में या अच्छे बुरे में उसमें क्यों रहना पड़ता है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिस समय हम लोग तीर्थ में स्नान करते हैं हम अपने कपड़े उतार देते हैं, है ना, कुछ सूट पहन कर तो कोई वहां पर स्नान नहीं करता होगा, ना शर्ट पहन के करता है, तो शर्ट कपड़े हम लोग कहीं रख देते हैं घाट पर, और पाप समझते हैं कि अब इसमें हमको निवास ठीक है तब तक के लिए, क्योंकि वहां जाएंगे हम मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर पाप, आगे प्रसंग आएगा उस कहेंगे, पाप अगर साथ में चले जाए तो वहां पर नष्ट हो जाएंगे, तो आपके कपड़े पर चले जाते हैं, और जैसे ही आपने स्नान कर लिया उस समय पाप सब समाप्त हो जाते हैं, और जैसे ही आपने कपड़े धारण कर लिए फिर वापस उस पर वो बैठ जाते हैं। गंगा स्नान करने के पश्चात आप कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई अनिष्ट कोई दुष्विचार आप मन में नहीं लाएंगे तो आपको कभी भी पाप लगने वाले, परंतु जैसे आपके मन में कोई ऐसे विचार आएंगे, और जब मैं बार बार इसका जिसका जिक्र करता हूं ना तब तक घंटी बज जाती है, बजती है ना, नहीं अभी यहां की घंटी बजने में समय है, आजकल तो कौन से ट्यून आ गई है
मोबाइल,
उसकी घंटी बजती है और घर से कोई समाचार आता है, वो सोचते हैं कि अच्छा अवसर है, अब इसके अंदर फिर से प्रवेश करो। पाप मुक्त हम तभी होते हैं जब हमारे संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप है पवित्रम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम पवित्राणाम पवित्रम यो, है ना? विष्णु सहस्त्रनाम में आया कि वो परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परम पवित्र है। परमात्मा जैसे शुद्ध कोई वस्तु है ही नहीं जगत में, बाकी सब में कोई ना कोई मिश्रण है। जहां पर माया का प्रवेश हुआ, और यहां तक कि आपको कुछ, जैसे कुछ लोग ऐसे मन में सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसे होना चाहिए, आपको खराब ना लगे, हमारी वो अपनी भावना होती है। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को 5 वर्ष तक ही विशुद्ध मानते हैं, ये मान्यता है, मानते हो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हैं, जब तक मथुरा नहीं गए हैं, तब तक उनको भगवान पूर्ण परब्रह्म मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वहीं तक हम पूजा करेंगे, ऐसे भी लोग अपने यहां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का तो स्वरूप वही है, सच्चिदानंद स्वरूप, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया, वो योगेश्वर है, वो शुद्ध स्वरूप है। मान्यता अलग अलग है, परंतु जब हम लोग भजन करते करते, साधना करते करते अपना अंतकरण निर्मल हो जाता है, जो परम पवित्र, जो मंगलमय स्वरूप जब हमारे भीतर आता है, तो गोधन गजधन वारी धन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धर्म धूरी समान। जब परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप अपने हृदय में प्रवेश करता है, तब दुनियादारी की आपको कुछ पता नहीं है, कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि ये दुनियादारी ये तो बाहर की बाहर है, वो अपने साथ में होने वाली नहीं है। आपका विशुद्ध स्वरूप आपने धारण कर लिया, और कब धारण करते हैं? उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जब आप सत्संग में होते हैं, विशेष करके सत्संग में, संकीर्तन में होते हैं, तो आपके हृदय के जो भाव है वो विशुद्ध हो जाते हैं, परिशुद्ध हो जाते हैं, और वहां परमात्मा का आपको कभी कभी अनुभव होता है। होता है कि नहीं? आपको सबको, जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो आपके मन में उस परमात्मा का स्वरूप कभी कभी डोलने लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। हम अगर राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, शिव के भक्त हो, गणेश के भक्त हो, किसी के भी भक्त हो, हमारे यहां तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उस परमात्मा का जब हम लोग स्मरण करते हैं, उसका गान करते हैं, तो हमारा मन, हमारा जो हृदय है वो प्रफुल्लित होता है, वो चिंता मुक्त हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान ने कहा निर्दोष ही परब्रह्म है, और केवल परब्रह्म ही निर्दोष है, बाकी सब में सदोष है। हमारे और आपके भीतर सब में द्वैत है, केवल परमात्मा द्वैत, केवल परमात्मा विशुद्ध है। और जो विशुद्ध स्वरूप जब हम लोग चिंतन करते हैं, हमारे हृदय में आ जाता है, और हमारे हृदय में जब आता है तो हम भी उसमें फिर गाने लगते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, और सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भगवती, हे भक्ति माता, आप अपने दोनों पुत्रों के साथ में जो भक्त लोग बैठे हैं ना, जो सनकादि ऋषि भागवत कह रहे हैं, और उनके सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं, उनके हृदय में आकर के बैठ जाओ। आप भगवती उनके हृदय में आकर के बैठी, और जब फिर वापस पुनः लोगों ने संकीर्तन शुरू कर दिया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा
नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा
नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति माता ने सभी भक्तों के हृदय में प्रवेश किया। भक्ति अपने हृदय में प्रवेश करती है, टिकती कितनी है वो बात अलग है। जब आप भगवान का नामस्मरण, भगवान का लीलाओं का श्रवण, और आपका जब मन पवित्र होता है, उस समय आप कोई भी जब कामना करते हैं सत कामना, उस समय भक्ति माता का प्रवेश आपके हृदय में होता है। वहां पर भी सभी भक्तों के हृदय में परमात्मा का जो ये भजन करते करते भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का प्राकटीकरण हुआ। जहां पर वैराग्य भी हो, जहां पर भक्ति हो और जहां पर ज्ञान हो, वहां पर परमात्मा होता है। और उसी समय, ऐसे समय में वहां पर साक्षात परमात्मा का प्रागट्य हुआ। वहां पर सब लोगों ने देखा कि देखो नारद जी का बड़ा उपकार, हम लोगों ने प्रत्यक्ष भगवान को यहां पर देखा। वहां पर भगवान को सब लोगों ने दर्शन किया और सब कृत्य कृत्य हुए। कृत्य कृत्य का मतलब होता है कि आप कुछ कर्म शेष नहीं है, अब कुछ करना बाकी नहीं, उसका नाम कृत्य कृत्य। कृत्य कृत्य व्यक्ति कब होता है? जब स्वरूप की प्राप्ति होती है। स्वरूप का मतलब है कि आप कौन हैं, वो परमात्मा क्या है। जब आप उसका ज्ञान कर लेंगे तो आप कृत्य कृत्य हो जाते हैं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े आनंदित हुई भक्ति माता ने बड़ा साधुवाद दिया कि हे नारद जी, ये आपके कारण हुआ। जैसे यहां पर प्रतिवर्ष आप लोग श्रवण करते हैं, उसके एकमात्र कारण कौन? प्रेमपुरी जी महाराज, है ना। ऐसे संत जब कृपा करते हैं तो ये प्राप्त होता है। यार ये अलौकिक है, ये लौकिक नहीं है। ऐसा लौकिक पदार्थ आपको प्राप्त वही संत प्रदान कर सकता है। ऐसे नारद जी की कृपा से, नारद जी के माध्यम से, सनत कुमार आदि ऋषियों के मुखारविंद से आप लोग, उन्होंने सब लोगों ने श्रवण किया, भक्ति पुष्ट संतुष्ट हुई और साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य भी अपने अवस्था को प्राप्त हुए। ज्ञान और वैराग्य अपने अवस्था को जब प्राप्त हो जाए तो आपको इस संसार का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगत होता है। बहुत कठिनता से ये पता लगता है कि हमारा कौन। जब मृत्युशैया पर कोई पड़ा हो ना, उसको पूछो कि तुम्हारा कौन, तो वहां पर कहेगा कोई कोई नु नथी रे, कोई किसी का नहीं है। परंतु उस समय तक देर हो गई होती है, उस समय समय निकल गया होता है। अब जब वहां पर भक्ति माता पुष्ट हुई, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, और जब भक्ति माता ज्ञान वैराग्य सहित हो, वहां पर भगवान वहां पर स्वयं प्रकट होते हैं। वहां पर स्वयं भगवान प्रकट हुए और उस समय बड़े आनंद से सब लोगों ने, अब यहां भी 7 दिन के बाद सब लोग चले जाएंगे, परंतु नामस्मरण करते हुए गए। और सौनक आदि ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया है कि भगवान आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई, और भी मैं कुछ श्रवण करना चाहता हूं। कहते हैं कि सौनक जी प्रश्न करते हैं, के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। ये सुध जी, कौन कौन इसमें और भी विशुद्ध हुए हैं, उनको इसका लाभ हुआ है, ये आप हमें उसका श्रवण कराइए। सुध जी महाराज एक प्रसंग कहते हैं कि तुंगभद्रा के तट पर एक उत्तम नगर था। तुंगभद्रा दक्षिण में ही, देखो बात तो कही जाएगी अपने देश की ही, तो गंगा तट की होगी। गंगा तट पर ये भागवत सप्ताह आप लोगों ने श्रवण की, जो सनकादि ऋषियों ने कही, हम लोगों ने श्रवण की ना, उसी से तो उसी का तो हम अंश यहां पर श्रवण कर रहे हैं। अब कहते हैं कि दूसरी बात कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे कस्मिन, तुंगभद्रा तट पर एक कोई नगर था जिसमें एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तुंग होता है उच्च, तुंग का मतलब होता है, ऐसे तुंगभद्रा नदी भी है, तुंग का एक मतलब होता है उच्च, और तुंगभद्रा तट पर एक उत्तम नगर है, उच्च शिखर है, उच्च नगर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव, जो उच्चतम मनुष्य जन्म से लेकर के दूसरा कोई बड़ा कोई जीव नहीं है। भगवान ने हमें बड़ी बड़ी कृपा करके उच्चतम हमें जन्म दिया है, इससे बढ़कर क्या है, कोई मनुष्य जन्म से बढ़कर के कोई जन्म है क्या। तो उस और उसमें एक नगर है, उस नगर में एक आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण रहता है। हमारे और आपके बीच में कौन भी घूम रहा है, आत्मदेव तो है ना। हम लोग आपको जब बात करते हैं, जब हम लोग एक दूसरे से अभिवादन करते हैं, जब आप फोन उठाते हो तो क्या कहते हैं, कृष्णा बहन की जय हो, नहीं जय श्री कृष्ण बोलते हैं, केम छो जय श्री कृष्ण। गांव में पहले लोग जाते थे तो एक दूसरे को मिलते थे तो क्या बोलते थे, राम राम। तो सामने से काशीनाथ भाई आ रहा हो तो काशीनाथ भाई की जय हो, ऐसा तो नहीं बोलते थे ना, वहां पर बोलते थे राम राम। तुम्हारे भीतर जो राम है उसको मेरा नमन है। तो हमारे सबके भीतर एक आत्मदेव रहते हैं जिसको वो परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप होने के नाते कहते हैं कि वो जो बड़ा आत्मदेव बड़े सुखी थे। अब साथ साथ में इतना ही नहीं था, वो तो सर्वशास्त्र के पारंगत थे, जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सर्वशास्त्र पारंगत थे, और दुनिया में सबके लिए कोई ना कोई दुख लगा रहता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सर्वथा सुखी है। एक वो व्यक्ति सर्वथा सुखी हो सकता है जिसको जो ब्रह्म ज्ञानी है, और दूसरा हो सकता है वो है उसको इस जगत का कुछ पता नहीं है। सुखी हम देख सकते हैं परंतु सुखी नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति जो परमात्मा को जानता है वो सर्व सुखी, उससे बढ़कर के सुख किसी को नहीं है। परंतु और बाकी सब लोगों को कोई ना कोई दुख है। और जब हम लोग संसार में रहते हैं तो कई एक चीजें होती है। उस ब्राह्मण के पास में सब कुछ था, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ था, एक चीज की कमी थी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इस बात को, क्या कमी थी? उसको कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। और उसके लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं और अंत में पछताते भी हैं। उसने बहुत प्रयत्न किए, दान किया, धर्म किया, सब बड़े बड़े पंडितों को बुला करके उनको दान दिया, दक्षिणा दिया, अनुष्ठान किए, परंतु उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और एक दिन उन्होंने विचार पश्चाताप करके करते हुए दुखी हो करके उन्होंने वन गमन किया। और वन में जाने के बाद में एक सरोवर के तट पर बैठे, और सरोवर के तट पर बैठने के बाद में उन्होंने वहां पर जल पिया। और जल पीने के बाद में उन्होंने एक संत को आते हुए देखा। और जब संत को आते हुए देखा और संत के पास जाने के बाद में सब लोग समझते कि हमारा दुख निवारण हो सकता है। संतों में ये जो पहुंचे हुए संत होते हैं ना, अब आजकल तो सबके पास सब लोग जाते हैं लेकिन किसी को शायद मिलता कुछ, क्या होगा वो भगवान जाने। लेकिन ऐसे कुछ संत होते हैं जिनके पास में जाने के बाद में आपको नैराश्य नहीं होता है। अब आत्मदेव जो स्रोत स्मार्थ जो विद्वान हो उनको कुछ पता तो है कि कौन संत है कोई असंत है। उन्होंने उनके पास में गया और उन्होंने कहा कि हे संत जी हमारे पर एक कृपा करो। कहा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं मेरे को पुत्र नहीं है, आप आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दो। संत ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता आप ये सब क्या मांग रहे हो? कहते हैं कि दुनिया में ऐसा सुख किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, इंद्र तक भी दुखी है, इसलिए आप इस चिंता छोड़ो और भगवान का भजन करो, संन्यास ले लो ना। उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी आपको क्या पता है गृहस्थ में कितना सुख है? आपने कभी जिसको देखा ही नहीं है आप उसको जानते नहीं हैं। लेकिन आप मुझे कोई ऐसा करो कि आप मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि विद्वान ब्राह्मण है तो दुखी भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो एक फल ले लो और ये फल अपने पत्नी को देना और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ये आप चले जाओ। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपने घर में आते हैं और अपने घर में आकर के वो फल अपने पत्नी को देते हैं और कहते हैं कि इसको खा लेना तुमको पुत्र होगा, हम लोगों के घर में बालक की उत्पत्ति होगी। अब इतने समय तक बेचारी स्वतंत्र घूम रही थी, उसको लगा कि अब इस अवस्था में पुत्र की प्राप्ति होगी, मेरी सहेलियां कहे क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, कुछ उसको लज्जा का अनुभव होने लगा। उस समय भी होता होगा, आज तो और अधिक होता होगा। तो उसने कहा विचार किया कि क्या किया जाए, और ब्राह्मण देवता उस फल को दे करके वो अपने कार्य में लग गए। और फिर उसने विचार किया कि अब उसने विचार किया कि इसकी क्या क्या हो सकता है, बुद्धि है, और जब सुबुद्धि होती है तो वो ठीक ठीक चलती है। लेकिन उसका नाम था धुंधुली। धुंधुली का मतलब होता है कि जो दुर्बुद्धि, और जिसके अंदर दुर्बुद्धि होती है उसके विचार कभी शुभ विचार हो नहीं सकते हैं। वो धुंधली के विचार भी उसी प्रकार के थे जैसे धुआं होता है ना, धुआं वैसी धुंधली। उन्होंने विचार किया कि अब मैं फल खाऊंगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे बड़ा कष्ट होगा, कोई चोर आ गए तो मैं कहां भागूंगी। देखो क्योंकि धन धान्य थे ना बहुत, चोर आएंगे तो कहां भागेगी, उसकी दुर्बुद्धि चलने लगी। फिर विचार आया कि ये क्यों ना ऐसा करो कि मेरी बहन भी एक गर्भवती है, उसको मैं ये फल दे दूं और अपने पति को कहूंगी कि मैं ये फल खा लिया है और मैं ऐसा वेश धारण कर लूंगी जैसे मैं गर्भवती हूं। इसने ऐसा विचार कर लिया और वो जो फल था वो क्या किया, वो गौ को खिला दिया और निश्चिंत हो गई और उसने वैसा ही वेश धारण कर लिया और उसी प्रकार अभिनय भी करने लगी। और कुछ दिनों बाद में कहते हैं कि वहां पर एक उसके बहन का जो पुत्र हुआ था उसी को लेकर के आई और कहा कि अपना पुत्र उत्पन्न हो गया है। वो धुंधुली ने उस पुत्र को वहां पर उस लालन पालन शुरू कर दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। उस धुंधुली ने कहा कि आपने यहां पर पुत्र तो हुआ है, मुझे दूध नहीं है, मेरे बहन का भी पुत्र पैदा हुआ था, उसका पुत्र मर गया इसलिए उसको यहां पर बुला लेते हैं। और वो उस पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। तीन महीने हो गए, गौ से भी एक पुत्र पैदा हुआ लेकिन केवल उसके कान लंबे लंबे थे इसलिए एक का नाम रखा गया गोकर्ण, जिसके गो के समान जिसके कान हो ऐसे उसका नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली का जो पुत्र था उसका नाम रखा धुंधुकारी। अब दोनों बड़े होने लगे, लोग कहने लगे कि जिसके यहां पर एक पुत्र नहीं हो रहा था उसके घर में तो आप तो गोभी पुत्र देने लगी। दोनों बड़े होने लगे परंतु जो गोकर्ण था वो महात्मा का प्रसाद था, वो ज्ञानी उत्पन्न हुआ, गौ से हुआ परंतु ज्ञानी हुआ। और जो दूसरा जो धुंधुकारी था वो असत कर्मों से हुआ था इसलिए वो असत कर्मकारी हुआ। और दोनों जब बड़े होने लगे तो जो धुंधुकारी था वो अनेक अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा, माता पिता को कष्ट देने लगा। और उसके बाद में माता पिताजी ने सोचा कि हमने किया था किस लिए और ये हमेशा चला आ रहा है, ये न समझना। सुपुत्र कौन होता है और कुपुत्र कौन होता है वो पता लग जाता है। कुपुत्रो जायते कचित, कोई भी कुमाता न भवती कहते ना। वहां पर एक कुपुत्र था एक सुपुत्र था और उस कुपुत्र ने तरह तरह के यातनाएं देने शुरू कर दिए। और पंडित जी को लगा अब क्या करें, तो पंडित जी को जो वहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे उनको गोकर्ण ने उपदेश दिया कि भगवान अभी संसार में कोई सार नहीं है, यहां से आप चले जाओ और तपस्या करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र भी अपने पिता को उपदेश देता है। जब पुत्र संत हो उसके विचार शुद्ध हो तो किसी को उपदेश दे सकता है। और ब्राह्मण देवता वो आत्मदेव नाम के देवता है वो वन में चले जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। अब धुंधुली थी, उसकी मां बची थी और व्यसन उसको लग गए थे बहुत से। उसने व्यसन की पूर्ति के लिए मां को परेशान शुरू कर दिया और मां जब परेशान हुई बहुत, उसने कहा कि जब दुख उसने सहन नहीं कर सकी उस समय उसने भी क्या किया कि जाकर के उसके घर के पिछवाड़े में वहां पर एक कुआं था वहां पर जाकर के उसने भी अपने प्राण त्याग कर दिए। अब वो धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र जब व्यक्ति होता है, जब पहले दुर्बुद्धि हो और उस पर कोई अंकुश करने वाला कोई न हो, तो उस दुर्बुद्धि का जो मनुष्य वो राक्षसी हो सकता है। उस समय उसके अंदर जो राक्षस प्रवृत्ति थी वो जग गई और उसने अनेक अनेक अशुभ कर्म शुरू कर दिए और फिर उसने अनेक प्रकार की वेश्याओं का गमन शुरू कर दिया और वेश्याओं को उन्होंने अपने घर में लाके रख दिया। परंतु वेश्याई होती है जिस प्रकार से, तो उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम छोटी छोटी चोरी करते हो, ये कब तक चलेगा, तुम कोई बड़ी चोरी करके लाओ। दुष्ट बुद्धि जब आती है तो दुष्ट बुद्धि के कारण उसी प्रकार वो व्यक्ति चलने लगता है। उसने एक राजा के वहां जाकर के बड़ी भारी चोरी करके आया, बड़ा उसने वहां से गहने मोती हीरे लाया। और उस समय उन वेश्याओं ने सोचा उल्टाओं ने कि अब अगर राजा को पता लग गया इसने चोरी की है तो ये भी मारा जाएगा और हम भी मारी जाएंगी, इसलिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये तो मारा जाए और हम बचे रहे। उपाय सोचा उन्होंने और उपाय सोच करके उसको पहले तो खूब पिलाई। आजकल पिलानी नहीं पड़ती है, आज पी लेते हैं आजकल लोग। पहले उस समय उसको खूब पिलाई, जब वो बेहोश हो गया उसको एक खाट से बांध दिया, खटिया से बांध दिया और उसको डंडे मार मार करके उसको मारने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी वो मरा नहीं। और उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा है कि फिर उसकी जैसी मृत्यु हुई, यहां पर भागवतकार लिखते हैं कि उसके मुंह में ये अंगारे डाल करके इस प्रकार के वहां पर उसको वहीं पर गाड़ करके वो जितना धन लाया था चुरा करके वो सब लेकर के वो चंपत हो गई। और वहां पर सब लोगों ने पूछना शुरू किया कि कहां गया तुम्हारा पति, कहे कि देश विदेश गया है धन कमाने के लिए। और उस समय वहां से जाने के बाद में वो जो धुंधुकारी था और उस समय गोकर्ण जी महाराज थे, उस समय तीर्थ यात्रा में चले गए थे और उस प्रेत योनि को प्राप्त हो गया वो धुंधुकारी। एक दिन की बात है, तीर्थाटन करते 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 गोकर्ण जी महाराज पुनः वापिस अपने गांव में आते हैं। रात्रि का समय है और रात्रि के समय में वो अपने घर में विश्राम करते हैं। उस समय जो धुंधुकारी था वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। रात के 12 बजे 1 बजे जो पिशाच समय होता है ना, राक्षस समय होता है कौन सा, 12 बजे से 2 बजे तक एक घड़ी। उस समय कोई बोलते शुभ काम नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से नींद आनी चाहिए। और उस समय सोए हुए थे गोकर्ण जी और उस समय कोई कभी हाथी का स्वरूप धारण करके कभी सिंह का स्वरूप धारण करके वो जो पिशाच था जो धुंधुकारी वो आने लगा, आया और डराने लगा। गोकर्ण जी को लगा कि ये कौन है। उस समय उन्होंने देखा कि तुम बोलते क्यों नहीं, वो बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके उस प्रेत पर जब छिटा, उस समय प्रेत ने कहा कि हे भ्राता मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। अरे धुंधुकारी, जब तुम्हारी ऐसी मृत्यु हुई तो मैंने बहुत जगह तुम्हारे लिए मैंने तर्पण किया, तुम्हारा श्राद्ध किया, सब जगह जहां जहां जाता था तुम्हारे लिए मैं भावना करता था, मैं भगवान से प्रार्थना करता था तुम्हारी मुक्ति हो जाए। वो जो धुंधुकारी बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, मेरी मुक्ति आपके श्राद्ध से नहीं हो सकती है, आपके तर्पण से नहीं हो सकती है, आपके कहीं जाकर के जलांजलि देने से नहीं हो सकती है। गोकर्ण जी ने विचार किया आप क्या करना चाहिए। वो प्रातः काल गए, नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय उन्होंने सूर्य के उपासक थे, उन्होंने सूर्य का स्तंभन किया और उस समय आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण जाओ सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने अपने ही गांव में वहां पर भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया और आयोजन करने के बाद में सबको आमंत्रित किया और सबको आमंत्रित जब किया तो सभी लोग आए। और उस समय जब प्रथम दिन की कथा हो रही थी, अब कहे कि जैसे भक्ति माता को सनकादि ऋषियों ने कहा कि सबके हृदय में बैठ जाओ, प्रेत हमारे हृदय में, पुण्य आत्मा के हृदय में प्रेत नहीं आ सकता है। देखो एक व्यवहारिक बात है कि आजकल लोग बोलते हैं भूत है, पिशाच है, ये है, वो अशुद्ध जगह पर जा सकता है, जहां पाप होगा वहां प्रेत जा सकता है, पुण्यात्मा के पास में प्रेत नहीं आ सकता है। ये भूल से भी किसी झाड़ फूक वाले के चक्कर में नहीं आना। जो सत्कर्म करता हो उसके यहां पर भूत पिशाच आने वाला नहीं है, और जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती हो तो वहां भूत पिशाच क्यों आएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नहीं आएगा। जहां परमात्मा का नाम होता हो वहां पर भूत पिशाच नहीं आता है, वहां पर भूत पिशाच जाए तो कहां जाए, बैठे तो कहां बैठे। फिर वहां पर एक बांस रखा हुआ था जिसमें सात गांठें थी, बांस होता ना बांबू, रखा हुआ था वहां पर, इसलिए रखा था कि वहां पर वो धुंधुकारी बैठ जाए, वो रखा हुआ था जिसमें सात गांठ, सब में सात गांठ होती है, जो मनुष्य है ना सब में सात गांठ होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, सात गांठें सब में पड़ी हुई है, जिससे वो रिक्त है वो महात्मा है, वो सज्जन पुरुष है, जिसमें ये सात दोष न हो ना उसको स्वयं समझ लेना है कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त पुरुष हूं, बद्ध नहीं हूं, शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी संसार माया परिकल्पितोशी, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, परंतु जिसमें ये दोष है वो बंधन युक्त है। गोकर्ण जी ने कहे इशारा किया है कि वहां पर बांस रखा हुआ है और उसमें जाकर के बैठ जाओ। गोकर्ण जी ने जैसा ही विचार किया वो प्रेत जो धुंधुकारी था वहां पर जाकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई और प्रथम जो गांठ थी वहां पर एक आवाज आई और खट से वहां पर एक गांठ टूटी। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन होता है, जब आप सत्संग करते हैं तो वास्तविकता का आपको जब दर्शन होता है तो आपके हृदय की ग्रंथि भेदन हो जाती है। तो वहां पर सत्संग के द्वारा वहां पर हृदय ग्रंथि भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, एक एक गांठ वहां पर समाप्त होती गई और सातवें दिन जो अविद्या है, अविद्या है ना, अज्ञान, अविद्या, मोहजाल, ये जो अंतिम गांठ है, उस दिन जब उसकी अंतिम गांठ जब खुल गई उसी समय वहां पर पार्षद आए भगवान के और वहां पर एक विमान आया, और विमान आया सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि यहां पर तो विमान आया है, और विमान में आकर विमान आया उन्होंने कहा कि वो धुंधुकारी को कहा कि आप चलिए। सब लोगों ने सोचा कि शायद गोकर्ण जी के लिए आया होगा, किसी ने विशेष सत्संग किया होगा, भजन किया होगा, सत्संग संकीर्तन किया होगा, सब लोगों ने सोचा कि हमारे लिए आया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये विमान धुंधुकारी के लिए है, इतना पापी जीव, क्योंकि उसको तो पापात्मा था। उन्होंने कहा कि ये पहले श्रवण करता था, नित्य श्रवण करता था दिन भर, ऐसा नहीं कि अभी दो घंटे चार घंटे की कथा, वो तो पहले दिन दिन भर कथा होती थी, और फिर रात्रि को इसका मनन करता था, क्या कहा, भगवान का स्वरूप क्या, उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे लोगों ने प्राप्त किया, किस प्रकार का वो मनन करता था, और उसके बाद में उस परमात्मा का स्वरूप को निरिध्यासन करता था, ध्यान करता था, जो चौबीसों घंटा उसी में रहता था, इसलिए उसके हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया और उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति हुई, उसको विमान लेकर के हम लोग आए हैं। अब उनको लेकर के उसने अपने भाई को उन्होंने गले लगाया, उनको नमस्कार किया कि आपके प्रभाव के कारण, आपके कारण मेरी जो सदगति हुई है और मैंने परमात्मा की प्राप्ति की है, इसलिए उनको दंडवत करते हुए वो जो धुंधुकारी था उसने भगवान का स्वरूप धारण करके वो चला गया वैकुंठ। सब लोगों ने सोचा कि ये तो अच्छा, ये तो हम लोगों ने भी भागवत की कथा श्रवण की। तो दूसरी बार सब लोगों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, अब हम लोग जैसे धुंधुकार्य ने कथा श्रवण की थी उसी प्रकार हम लोग भी कथा श्रवण करेंगे। फिर श्रावण मास में पुनः एक बार कथा का आयोजन हुआ और कथा का आयोजन होने के बाद में वहां पर जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे सब लोगों ने कहा कि अब हमसे भूल न हो। और जब सातों दिन के बाद में वहां पर अनेक विमान आए और कहते हैं कि वहां पर जितने वहां पर सुनने वाले थे सबके लिए एक एक विमान आ गया और सबको बोले कि आप बैठ जाओ, हमारे यहां पर नहीं आने वाला है क्योंकि उतरने की जगह ही नहीं है और आ भी जाए कदाच तो हम लोग बोलेंगे अभी थोड़े दिन और रुक जाओ ना, थोड़ा सा काम बाकी, ज्यादा नहीं है, तब आ जाना। जाने बहुत मुश्किल है, जब हम जाने के लिए हम ये आते हैं ना लोग ऊपर वाले, हम लोग बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं, अभी कुछ दिन काम है। लेकिन आप लोगों को भी जब आप जब स्वयं जाने लग जाएंगे उस समय यमदूत नहीं आएंगे, आपको देवदूत लेने आएंगे, ये समझ लेना, क्योंकि आपने सत्संग किया हुआ है। भले ही उस प्रकार का सत्संग न हो परंतु आपने श्रीमद् भागवत का जब जब श्रवण करते हैं तब आपको उस परमात्मा के देवदूत लेने आएंगे और आप जब यहां से जाएंगे तब भगवान आपसे पूछेंगे तुम कुछ करके आए हो, तो आप बोलेंगे कि हमने बहुत से संसारिक कार्य भी किए, लेकिन आप एक बात निश्चित कह सकेंगे कि हमने आपने जिस कार्य से भेजा था पूरा तो नहीं किया परंतु थोड़ा सा कार्य हमने किया है, आप भगवान को कह सकेंगे। जिस प्रकार सभी की सभी लोग जैसे कहते हैं कि जैसे भगवान श्री राम के समय में सब लोग अपने स्थान में चले गए थे उसी प्रकार सब के सब उस समय वैकुंठ चले जाते हैं और इस प्रकार बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा है। और श्रीमद् भागवत कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत करने के लिए कोई वन हो, कोई तीर्थ हो, कोई और भी अच्छी जगह हो, वहां पर श्रीमद् भागवत हो सकती है। और श्रीमद् भागवत करते समय क्या करना चाहिए इसका भी यहाँ पर अनेक प्रकार से यहाँ पर बतलाया है। और बीच बीच में आपको यहाँ पर करना चाहिए कि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत करते करते आपको कभी कभी नमः शब्द जयः शब्द, कभी कभी ओम नमः पार्वती पते, हम लोग बोलते हैं ना जय शब्द, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ऐसे बीच बीच में अपने को कुछ ना कोई शब्द का उच्चारण करते रहना चाहिए। कभी कभी शंख ध्वनि का भी यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रवण करने के पश्चात आपकी अंतकरण में निर्मलता आएगी और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के माध्यम से आपको इसकी बहुत सूक्ष्मता से सूक्ष्मता में आपको इसकी जानकारी दे दी है। और मेरा स्वभाव ये है कि समय से पहले आना चाहिए और समय के बाद भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मेरे सामने जो घड़ी है उसमें बराबर 7:30 हुए हैं, इसलिए और आपको भी ज्यादा यहाँ पर न बिठाना, ये भी मुझे ऐसा लगता है, इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 Narayan 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 Narayan
भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत आरती, पापियों को पाप से तारती।
अगर कोई माइक्रोफोन चालू है तो प्लीज बंद कर दे, उससे कोई विस्लिंग हो रही है। अगर कोई माइक्रोफोन बाहर का कोई चालू है, पंडित जी का चालू है तो
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला, नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम, श्री राम यही घन श्याम, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करना बतारा, सावसंतम नवम भवानी शैतम कर्पूर पूरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रौ दर्शन निराजनम ते जगदीश पूरे, निराजनम ते जगदीश पूरे, निराजनम ते जगदीश।
देवास्तानि धर्मा निपराथामान्या सन्न तेहानाकं महिमानः सचन्ताजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयम् वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वाराज्यम् वैराज्यम् पार्यमेष्ट्यम् राज्यम् महाराजमाधिपत्यमयम् समन्तपरिया ईशात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्ताधापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परवेष्टितारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रियेर्विषवे देवासभासदेति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीमहाभागवताय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकम् नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् सुरेश्वर यत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु मे आवाहनम् न जानामि तवार्चनम् पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यताम् परमेश्वर गतम् पापम् गतम् दुःखम् गतम् दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहम् तव दर्शनात् अत्र धूपदीपनैवेद्यदक्षिणा प्रदक्षिणा समन्वित कृतपूजनार्चनेन श्री लक्ष्मीनारायण प्रियतान्न मम तत्सद्देवतार्पणमस्तु ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय कृष्ण कन्हैया की जय भागवत महापुराण की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।